इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित होकर जब कर्ता संकल्प पूर्ति के सुख को भोगना चाहता है तब उसकी कर्म में प्रवृत्ति होती है, और जब कर्म में प्रवृत्ति होती है तब ये प्रश्न पैदा होता है कि हमने भला काम किया या बुरा काम किया। आप विचार करके देखें कि यदि संकल्प पूर्ति के सुख का प्रलोभन जब हमको अवश्य न रहे, कल्पना करो हम इस बात को निर्णय कर लें कि भाई हमें संकल्प पूर्ति से सुख का भोग नहीं करना है। आप सच मानिए, चाहे आप अनंत जन्मों के विकार माने चाहे आप इस जन्म के विकार माने, जो साधक संकल्प पूर्ति के सुख के प्रलोभन का त्याग कर देता है उस साधक में कभी भी अकर्तव्य का जन्म नहीं होता। तो अकर्तव्य का बीज क्या है? अकर्तव्य का बीज क्या है? संकल्प पूर्ति के सुख का भोग। अब कोई ये कहे कि भला प्राणी संकल्प पूर्ति के बिना रही कैसे सकता है, तो अगर हम आपसे ये पूछे भला प्राणी के क्या सभी संकल्प पूरे हो सकते हैं, तो ये बात भी आपको माननी पड़ती है कि सभी संकल्प पूरे नहीं होते। तो जिस समय आपका संकल्प पूरा नहीं होता क्या उस समय आपका अस्तित्व नहीं रहता? यदि उस समय अस्तित्व रहता है तो हमें इससे एक बड़ा प्रकाश मिलता है, बड़ा प्रकाश मिलता है, और वो प्रकाश ये मिलता है कि यदि संकल्प पूर्ति में अपना अस्तित्व रह सकता है तो संकल्प निवृत्ति में भी अपना अस्तित्व रह सकता है। अगर हम संकल्प निवृत्ति को आदर देने लगे, संकल्प निवृत्ति का महत्व तो अपना लें, तो संकल्प आपूर्ति का जो दुख था वो तो अपने आप मिट जाता है, और जब संकल्प आपूर्ति का दुख मिट जाता है तब तो संकल्प पूर्ति के सुख का कोई महत्व ही नहीं रहता। तात्पर्य क्या निकला कि जब संकल्प पूर्ति के सुख का महत्व नहीं रहता तब अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होता। अब लोग संदेह करते हैं कि हाँ यार ये कैसे निर्दोष था जो जरासी असावधानी से दोष में बदल जाती है? नहीं नहीं भाई, निर्दोषता कभी दोष में नहीं बदलती। तो दोष में कौन बदलता है कि जो आंशिक निर्दोष है और आंशिक दोषी है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, दोष है मैं नहीं, दोष है मैं नहीं, है मैं दोष हो नहीं सकता, क्योंकि जिस है कहते ही उसको है जो अविनाशी है, और जो अविनाशी होता है उसमें विकार नहीं होता, ये नियम है, और जिसमें विकार नहीं होता उसमें दोष आएगा कहाँ से? और यह कहते किसको है कि विनाशी हो, जरा ध्यान दीजिए, नाशी बिचारे में दोष रहेगा कहाँ से? नाशी ये कितना बड़ा दोष है कि जो और कोई दोष उसमें आ ही नहीं सकता, तो नाशी में दोष नहीं अविनाशी में दोष नहीं। जरा ध्यान दीजिए, जिसका नाश हो रहा है उसमें कर्तृत्व नहीं होता, और जो अविनाशी है उसमें भी कर्तृत्व नहीं होता। जरा दर्शन की बात, जो विचारक है उन्हें तो रस मिलेगा, और भोले भाले बेचारे कहेंगे क्या ये बकरा है। तो ध्यान दीजिए, जो अविनाशी है उसमें कर्तृत्व हो नहीं सकता क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं, और जो नाशी है उसमें कर्तृत्व हो नहीं सकता क्योंकि उसमें चेतना नहीं, जिसमें चेतना नहीं उसमें कर्तृत्व नहीं, और जो स्वभाव से ही चेतन है उसमें कर्तृत्व नहीं। तो कर्तृत्व है किसमें मानना पड़ेगा? उसमें जो न अविनाशी है न नाशवान है। आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात कहते हैं कि अविनाशी भी नहीं है और है, और नाशवान भी नहीं है और है, यही तो आश्चर्य है, यही तो आश्चर्य है। और इसी आश्चर्य को हल करने के लिए आपको हमें ये सोचना पड़ेगा कि बताओ संकल्प का उद्गम स्थान क्या है, संकल्प किसमें उत्पन्न होता है। तो आजकल के सस्ते छापे खाने के पढ़कर के लोग तो कहते हैं मन में होता है। अरे भाई मन में संकल्प कोई मन करता है? कोई कह दे कि फाउंटेन पेन में लिखने का संकल्प है, आप कहेंगे पागल हो गया है, भला कलम में कभी लिखने का संकल्प होता है? बहुत ठीक, तो फिर मन में कैसे लिखने का संकल्प हो जाएगा? मन भी तो करण है, तो मन में संकल्प करने की सामर्थ्य नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, मन संकल्प का कर्ता नहीं है, मन कर्ता की रुचि पूर्ति के लिए संकल्प के रूप में परिणत होता है। ध्यान दीजिए, मन कर्ता की रुचि की पूर्ति के लिए संकल्प के रूप में परिणत होता है। साधारण व्यक्ति कहते हैं कि मन में संकल्प होता है, मन में संकल्प नहीं होता। मन और संकल्प ये दोनों अभेद हैं, अभेद दोनों अभेद हैं। लेकिन इस रहस्य को जाना नहीं पाते कि इसलिए नहीं जान पाते कि आंशिक संकल्प आपके पूरे होते रहते हैं, कुछ बिना पूरे हुए रहते हैं। इसलिए पूर्ति अपूर्ति का जो द्वंद्व है, इस कारण आप कभी भी संकल्प और मन का विभाजन देख नहीं पाते। और जब संकल्प और मन का विभाजन नहीं देख पाते तो हार मानकर आप कहने लगते हैं कि मन में संकल्प उठते हैं, मन में संकल्प उठते हैं। अच्छा भाई, मन में संकल्प उठे और दुखी आप हो? जैसे कोई कहे कि मोटर चल रही है लेकिन परेशान हमें, अजीब आदमी है, चल रही है मोटर और परेशान है आप। इससे भाई ये सिद्ध होता है कि हम लोग ज्ञान के संबंध में भी सीखी हुई बातों को अमल में लाते हैं, सुनी हुई बातों को अमल में लाते हैं। तो जब तक जिज्ञासु सुनी हुई और सीखी हुई बात को अमल में लाएगा, तब तक वो सिखाने वाला ज्ञानी तो हो जाएगा, सिखाने वाला तो ज्ञानी हो जाएगा और उसे ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कभी कभी मैं विनोद में कहता हूँ कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। लोग इसको विनोद समझकर टाल भी देते हैं। और कोई कोई जो पठित होते हैं, जो सचमुच पठित होते हैं, वो इस बात को मान भी लेते हैं। क्यों? जरा सोचिए, ज्ञान का प्रकाश विवेक में अवतरित हुआ, विवेक से बुद्धि में आया, बुद्धि ने उसको संकल्प का रूप देकर मन के स्तर पर कर दिया और मन ने इंद्रियों के स्तर पर आकर के दो भागों में बांट दिया, एक क्रिया रूप में, एक ज्ञान रूप में। अगर आंख देखती है तो पैर चलता है। अब आंख ने देखा कि अमुक वस्तु वहां पड़ी है, लेकिन आंख में ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को उठा ले, तब पैर वहां तक चलेगा। लेकिन पैर में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को उठा ले, तब हाथ उठाएगा। लेकिन हाथ में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को खा ले, तब मुंह खाएगा। और जब मुंह खाएगा तो मुंह में ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को पचा ले, तब वो पेट के पास संग्रह कर देगा, पेट पचाएगा और सब अवयव को बांट देगा। ये प्रवृत्ति आप लोग देखते हैं कि नहीं? लेकिन इसमें कभी आपने ये भी विचार किया कि क्रिया में ज्ञान नहीं, ज्ञान में क्रिया नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिए, क्रिया में ज्ञान नहीं, ज्ञान में क्रिया नहीं। अब आप बहुत ही बुद्धि से जोर लगाएं और ये कह दें कि भाई देखना भी एक क्रिया है और सुनना भी एक क्रिया है। अब भाई देखना तो ज्ञान इंद्रिय है, वो भी क्रिया है। इस प्रकार के ज्ञान को जब आप क्रिया मान लेते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को जब क्रिया मान लेते हैं, तब वो ज्ञान इंद्रिय बिना संकल्प के काम नहीं करती, बिना संकल्प के काम नहीं करती। तात्पर्य क्या निकला कि मन के स्तर पर ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों एक हो जाती हैं। जहाँ आपने मन का स्तर पर पहुंची वृत्ति, जहाँ आपने मन के स्तर को समझा, तो वहाँ देखने का जिसमें संकल्प, उसी में हाथ से उठाने का संकल्प। संकल्प करता दो नहीं, तो देखिए जिसको देखने का संकल्प होता है उसी को चलने का भी संकल्प होता है, उसी को सुनने का भी संकल्प होता है। तो संकल्प का करता एक और देखने और करने के यंत्र दो प्रकार के हो गए। एक तो ज्ञान इंद्रिय के नाम से कहा आपने और एक तो कर्म इंद्रिय के नाम से कहा। तो मन के स्तर पर कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दोनों एक हो गई, लेकिन मन में संकल्प उठे वो आप निर्णय कर दें कि अमुक काम हम नहीं करेंगे। अगर आप ये निर्णय कर दें ये करने योग्य नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो मन अपने आप उस संकल्प को छोड़ देता है। तो आप सोचिए कि अगर मन स्वतंत्र संकल्प करता होता तो बुद्धि के निर्णय मात्र से कैसे छोड़ देता? तो पता चला कि बुद्धि भी एक कर्ण है और उसने जो बात बताई उसके आधार पर संकल्प का त्याग कर दिया अथवा पूरा कर दिया। अब आप सोचिए कि बुद्धि ये निर्णय कब करती है? जरा सोचिए, अगर आपने संकल्प पूर्ति के सुख का भोग स्वीकार किया है, तभी बुद्धि निर्णय करेगी जैसा करो। और आप कहें हमें संकल्प पूर्ति के सुख का भोग स्वीकार नहीं है, बुद्धि बिचारी कभी निर्णय करने नहीं जाएगी। सार क्या निकला? सार ये निकला कि जो भोगी है वही करता है। क्या ध्यान दीजिए, न तो शरीर करता, न इंद्रियां करता, न मन करता, न बुद्धि करता। थोड़ा ध्यान दीजिए, करता कौन? बोले भोगी। भोगी, अब भोगी का पता लगाओ, भोगी का पता लगाओ तो भोगी कौन है? जब आप भोगी का पता लगाने चलेंगे तो सच मानिए कि है को आप भोगी नहीं कह सकते। जिसको यह करके संबोधन करते हैं उसको आप भोगी नहीं कह सकते, और जिसको है करके अथवा वो करके संबोधन करते हैं उसको आप भोगी नहीं कह सकते। तो यह भोगी नहीं हुआ, इससे तो ये सिद्ध हो गया कि जो नासी था वो भोगी नहीं है, और है भोगी नहीं हुआ, इससे ये सिद्ध हो गया कि जो अविनाशी था वो भोगी नहीं है। तो भला बताओ तो भाई, फिर भोगी है कौन? अविनाशी भोगी नहीं, नासी भोगी नहीं। तो जब आप भोगी का पता चलाने लगाने चलेंगे और ऐसे भी हटा लेंगे और ऐसे भी हटा लेंगे, तो ऐसे और ऐसे हटाते ही भोगी नाश हो जाएगा, भोगी नाश हो जाएगा। और जब भोगी नाश हो जाएगा, जब भोगी नाश हो जाएगा तब योग रह जाएगा। लेकिन एक बात जानते हैं आप, एक बात जानते हैं, उसमें बड़ा चमत्कार है। अब वो चमत्कार यह है कि यह को निकाल देने के बाद और है को निकाल देने के बाद भोगी का अस्तित्व नहीं रहता, ये निर्विवाद सत्य है। किंतु अगर रहता क्या है? योग रहता है, योग। जब भोगी नहीं रहता तब भोग नहीं रहता, और जब भोग नहीं रहता तब रहता है योग। तो वो योग श्रम साध्य है, जरा ध्यान दीजिए, वो योग श्रम साध्य है? कदाप नहीं। और आप जानते हैं कि जो श्रम साध्य नहीं होता वो हमेशा अखंड होता है, और जो श्रम साध्य होता है वो हमेशा खंड वाला होता है। तो उलझन कहाँ पड़ी? कि उलझन यहाँ पड़ी कि भोगी रहते हुए योग दर्शन का टीका कर बैठे। ध्यान दीजिए, बुरा मत मानना भाई, भोगी होकर किया योग दर्शन का टीका, तो लगाया योग में भोग, लगाया योग में भोग। ये विभूति पाठ क्या है? विभूति पाठ क्या है महाराज? ये योग में भोग। तो भोगी होकर किया योग का, योग दर्शन का टीका, तो लगा दिया भोग में योग। और महाराज भोगी होकर किया वेदांत दर्शन का टीका, तो लगा दिया ज्ञान में भोग। आपने ज्ञान में भोग क्या? और भोगी होकर किया, भोगी होकर किया आस्तिक दर्शन का टीका, तो लगा दिया प्रेम में भोग। बोले प्रेम में भोग कैसा, ज्ञान में भोग कैसा, और योग में भोग कैसा? आप कहने लगे मैं योगी, आप कहने लगे मैं ज्ञानी, आप कहने लगे मैं प्रेमी। तो भाई जरा सोचो तो सही, मैं और योगी तो दो चीज हो गई ना। अच्छा भाई, योग को निकाल करके मैं क्या? चुप होना पड़ता है महाराज। ज्ञान को निकाल करके मैं क्या? चुप होना पड़ता है महाराज। प्रेम को निकाल करके मैं क्या? चुप होना पड़ता है। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि भाई योग प्राप्त होने पर जब तक हम योगी हैं तब तक योग के भोगी हैं, और ज्ञान प्राप्त होने पर जब तक हम ज्ञानी हैं तब तक ज्ञान के भोगी हैं, और प्रेम प्राप्त होने पर जब तक हम प्रेमी हैं तब तक प्रेम के भोगी हैं। और भाई जो प्रेम का भोगी है वो कभी कभी काम का भोगी हो सकता है, और जो ज्ञान का भोगी है वो कभी कभी अज्ञान का भोगी हो सकता है, और जो योग का भोगी है वो कभी भोग का भोगी हो सकता है। इस कारण भाई ये समस्या सुलझ नहीं पाती, और जितना इसको सुलझाते हैं उतनी उलझती ही मालूम होती है कि भाई हम कैसे मान लेंगे वर्तमान निर्दोष है। अरे भाई वर्तमान निर्दोष तो ऐसे मान लो कि जहाँ भोगी का नाश है, थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ दोष का अत्यंत अभाव है। तो भोगी का नाश कैसे होता है? किसी अभ्यास से होता है? नहीं नहीं, भोगी का नाश होता है विवेक से, और किस विवेक से होता है कि जो विवेक आपको प्राप्त है। बोले कौन सा विवेक आपको प्राप्त है, जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही। कर्तव्य के क्षेत्र में किसे अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है? कर्तव्य के क्षेत्र में सभी को अकर्तव्य का ज्ञान है। अच्छा भाई, कर्तव्य के क्षेत्र से ऊपर है योग विज्ञान। आप ध्यान दीजिए, कर्तव्य विज्ञान की जहाँ समाप्ति होती है वहीं से योग विज्ञान का आरंभ होता है। आप कहेंगे योग विज्ञान क्या, कि जहाँ शुद्ध संकल्प की पूर्ति के सुख का भोग नहीं है, जहाँ अशुद्ध संकल्प की निवृत्ति है और शुद्ध संकल्प की पूर्ति है, यह है कर्तव्य विज्ञान। अशुद्ध संकल्प की निवृत्ति से दोषों का नाश और शुद्ध संकल्प की पूर्ति से दूसरों के अधिकार की रक्षा, यही नियम है। शुद्ध संकल्प की पूर्ति जो होती है वो दूसरों के अधिकार की रक्षा में होती है, और अशुद्ध संकल्प का जो त्याग होता है वो अपने अधिकार के त्याग में होता है। आप कहेंगे कैसे हम मान लें, जरा ध्यान तो दीजिए, अशुद्ध संकल्प कहते किसको है? अशुद्ध संकल्प का अर्थ है वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा सुख की आशा। सुख मिले न मिले अलग की बात, लेकिन सुख की आशा, तो जब वस्तु के द्वारा सुख की आशा हुई तो लोभ की उत्पत्ति हो गई, और जब व्यक्ति के द्वारा सुख की आशा हुई तो मोह की उत्पत्ति हो गई, और जहाँ लोभ मोह की उत्पत्ति हो गई वहाँ सभी विकारों की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि प्रत्येक विकार में अनंत विकार हैं। ऐसा कोई विकार नहीं है जिसमें सभी विकार न हो, इसी प्रकार ऐसी निर्विकारता कोई नहीं है जिसमें समस्त निर्विकारता न हो। कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, विचार नहीं करते हैं। सच बात तो यह है कि जब विकार का नाश होता है तो समस्त विकारों का नाश होता है, और जब तक समस्त विकारों का नाश न दिखाई दे तब तक सोचना चाहिए कि विकार की कमी हुई। और विकार की कमी तो सदैव ही जीवन में रहती है, क्यों? सर्वांश में तो कोई विकारी होता ही नहीं, सर्वांश में तो कोई दोषी होता ही नहीं। तो आंशिक निर्दोषता तो जीवन में रहती ही है, लेकिन आंशिक निर्दोषता को निर्दोषता न के नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि जब सर्वांश में निर्दोषता आती है तभी निर्दोष जीवन कहते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये निकला कि वस्तु व्यक्ति के द्वारा जो सुख की आशा है ये है अपना अधिकार, और इसी का नाम है अकर्तव्य। सच मानिए तो अपने अधिकार का दूसरा नाम दोष है, और दूसरों के अधिकार की रक्षा का दूसरा नाम निर्दोषता कहिए कह सकते हैं। अगर अपने अधिकार का नाम पाप रख लो तो दूसरे के अधिकार का नाम पुण्य रख लो, अगर अपने अधिकार का नाम अकर्तव्य रख लो तो दूसरे के अधिकार का नाम कर्तव्य रख लो। तो ये जो कर्तव्य विज्ञान है इसने अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा की बात बताई, और इसका फल ये बताया, इसका फल ये बताया कि कर्तव्य विज्ञान सुंदर समाज का निर्माण करके कर्ता को राग रहित कर देता है, ये उसका फल बताया। यानी कर्तव्य विज्ञान का ये फल है कि सुंदर समाज का निर्माण भी हो जाएगा और कर्ता राग से रहित भी हो जाएगा। तो जब कर्ता राग से रहित होता है तब कर्तव्य विज्ञान अपने आप योग विज्ञान में विलीन हो जाता है। चाहे तो ये मान लो, और चाहे यो मान लो कि कर्तव्य निष्ठ प्राणी को योग प्राप्त हो जाता है। तो योग विज्ञान क्या है भाई, कि योग विज्ञान में श्रम नहीं है। क्या ध्यान दीजिए, योग विज्ञान में श्रम नहीं है। अच्छा, और क्या है कि योग विज्ञान में बाहरी हलचल नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। तो क्या गति नहीं है कि नहीं? गति तो है, या गति में और प्रवृत्ति में एक बड़ा अंतर। प्रवृत्ति हमेशा पर की ओर होती है, पर की ओर होती है, और गति हमेशा स्व की ओर होती है। तो जो परकी ओर प्रवृत्ति होती है वो पराधीनता में, जड़ता में, अभाव में आबद्ध करती है, और स्व की ओर जो गति होती है वो स्वाधीनता में, चिन्मयता में, पूर्णता से अभिन्न करती है। इसलिए योग विज्ञान की जो गति है वो स्व की ओर है, पर की ओर नहीं है, अथवा यूं कह दो कि वो है की ओर है, यह की ओर नहीं है, अथवा यूं कह दो कि वो अनंत की ओर है, सीमित की ओर नहीं है। तो योग विज्ञान की जो गति है उस गति में कर्तृत्व की गंध भी नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, और जिसमें कर्तृत्व की गंध नहीं है वो सुतः है, सुतः, और सुतः कहते ही उसको है जो अपने आप हो। तो वही योग विज्ञान, वही योग विज्ञान किसमें बदलता है? तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान में योग विज्ञान जब बदलता है उसी को अध्यात्म विज्ञान कहना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान, कर्तव्य विज्ञान ने हमें योग विज्ञान में प्रवेश करा दिया, और योग विज्ञान ने अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश करा दिया। तो अध्यात्म विज्ञान से क्या मिलता है भाई? अध्यात्म विज्ञान से क्या मिलता है कि अध्यात्म विज्ञान जो है वो केवल परम प्रेम का प्रतीक है। अध्यात्म विज्ञान का अर्थ ही होता है कि जहाँ केवल परम प्रेम है उसी परम प्रेम का नाम आस्तिक विज्ञान है। तो आस्तिक विज्ञान जो हुआ वो साध्य हुआ, और अध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान और कर्तव्य विज्ञान ये क्या हुआ? ये साधन तत्व हुआ। जरा ध्यान दीजिए, कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान ये है साधन तत्व, साधन नहीं, साधन तत्व, और आस्तिक विज्ञान जो है यह साध्य तत्व। तो साध्य तत्व और साधन तत्व इन दोनों में जाति एकता है, इन दोनों में स्वरूप की एकता है, और इन दोनों में स्वरूप की एकता होने से साधन तत्व और साध्य में, साध्य में कभी दूरी नहीं रहती, कभी भेद नहीं रहता। तो ध्यान दीजिए, दूरी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, और सच पूछिए तो कभी मिलन भी नहीं होता। आप कहेंगे अजीब आदमी है, दूरी भी नहीं मानते और भेद भी नहीं मानते और मिलन भी नहीं मानते। कि भाई अगर दूरी मान करके चुप हो, दूरी मिटा करके चुप हो जाते हैं ना, उन्हीं में योग का अभिमान रहता है। जो दूरी मिटा करके चुप हो जाते हैं और कहते हैं बस यही पूर्णता है, उन्हीं में योग का अभिमान होता है। और जो भेद मिटा करके चुप हो जाते हैं और ये स्वीकार करते हैं इसी में पूर्णता है, इसी में पूर्णता है, उन्हीं को इस बात का अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। और जो भाई प्रेम प्राप्त करके, प्रेम प्राप्त करके उसकी पूर्णता मान लेते हैं, जो प्रेम की पूर्णता मान लेते हैं, उन्हीं में ये बात रहती है कि मैं प्रेमी हूँ। तो मैं प्रेमी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, ये जो अलग अलग जो आप स्वीकार करते हैं वही दार्शनिक भेद होता है। दार्शनिक भेद कुछ नहीं, किसी ने योगी मानकर संतोष किया, किसी ने ज्ञानी मानकर संतोष किया, किसी ने प्रेमी मानकर संतोष किया। तो जिसने कुछ मानकर संतोष किया उसी का नाम हो जाता है दार्शनिक भेद, दार्शनिक भेद।
दूसरे लोगों में ये बात पैदा होगी और वो भी छीन लेंगे, तो छीनने का एक क्रम चल जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि भाई कर्तव्य विज्ञान का अर्थ केवल इतना है कि जो आपको प्राप्त है, शरीर वाले को शरीर प्राप्त है, योग्यता वाले को योग्यता प्राप्त है, वस्तु वाले को वस्तु प्राप्त है, जो जिसको प्राप्त है वो उसका दुरुपयोग न करे, बस इतनी सी बात है। जब हम प्राप्त का दुरुपयोग नहीं करते तो आप जानते हैं एक बड़ा भारी सत्य है, और वो सत्य ये है कि जो प्राप्त का दुरुपयोग नहीं करता उसको आवश्यक वस्तु स्वतः प्राप्त होती है। परंतु आज इस कर्तव्य विज्ञान पर भरोसा नहीं रहा, न तो मुझे मजदूर का दिखाई देता है भाई, और न महाजन का दिखाई देता है, और व्यक्तिगत रूप से मजदूर में भी है और महाजन में भी है, सभी में है, लेकिन सामूहिक रूप से नहीं दिखाई देता। क्यों? ये भरोसा अगर होता तो हम 24 घंटे में 8 ही घंटे काम करेंगे। ये बात मजदूर कभी नहीं मानता। उसे तो ये बात मालूम होती कि ये मेरा जो श्रम है, शारीरिक श्रम जो मुझे प्राप्त है, और पढ़े लिखे को मालूम होती कि बौद्धिक श्रम मुझे जो प्राप्त है, इस श्रम से ही मेरी आवश्यकता पूरी होगी, पर ऐसा नहीं मानता। बड़ा भयभीत होता है। एक बार एक मिल के मैनेजर हमसे मिलने आए, हमने पूछा आपको क्या तनख्वाह मिलती है, बोले 1200 रुपये मिलता है। हमने कहा हमें एक बात बता दो कि वो बेपढ़ा लिखा सेठ धन कमाता है कि तुम? तो उसे कहना पड़ा कि हम तो मालिक तुम के वो कि मालिक वो। हमने तो कैसे कि वो हमको निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर तुम अपनी योग्यता में विश्वास करो, पढ़े लिखे लोग, देखिए सच कहते हैं, लोग कहते हैं कि पूंजीपति ने समाज को बिगाड़ दिया। अगर मुझसे कोई पूछो तो सबसे ज्यादा तो मैंने बिगाड़ दिया, क्योंकि जब भीतर आज पुरुष नहीं रहते तो पढ़े लिखे लोग बिगड़ जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है पढ़े लिखों ने बिगाड़ दिया, क्योंकि जब पढ़े लिखे बिगड़ते हैं तो राष्ट्र बिगड़ जाता है, और जब राष्ट्र बिगड़ता है तो सारी जनता बिगड़ जाती है। ऐसा नियम है। तो सबसे बड़ा दोषी तो है मैं सब दोषी बड़ा दोषी मानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर पढ़े लिखे लोग ये सोचें कि भाई देखो इस सेठ ने अमुक मैनेजर के साथ अन्याय किया, तो हम नहीं काम करने जाएंगे। तो सेठ बेचारा तुम्हें निकाले? बोले कभी नहीं निकाले। और अगर तुम ठीक सही काम करो, सही काम इस मानी में कि जो योग्यता तुम्हें प्राप्त है उस योग्यता के आधार पर न सेठ के अधिकार का अपहरण होने दो और न मजदूर के अधिकार का अपहरण होने दो, तो कभी झगड़ा पैदा हो? बोले कभी नहीं। लेकिन तुम करते क्या हो कि अपने लालच में सेठ की उस नीति को मान लेते हो जो नहीं मानना चाहिए। और वही दोष हमारे नेता में आया। हमारे नेता ने मजदूर की उस नीति को मान लिया, ध्यान दीजिए, मजदूर की उस नीति को मान लिया जिसे नहीं मानना चाहिए। क्यों मान लिया? इसलिए नहीं कि उन्हें मजदूर के साथ कोई सहानुभूति है, इसलिए कि हर मजदूर के चंदा में से जो हिस्सा मिले वो अपना धन, और पूंजीपति से जो मिले चुपचाप वो अपना धन। तो दोहरा धन बनाकर हर एक व्यक्ति ने धन के संपादन का प्रयास किया और नाम दिया सुधार का। तो सोचिए, निंदा करते हैं धनी की, किस लिए? कि उसके पास धन है, और चाहते क्या है? बोले धन। तो जिस धन ने आज किसी को भी पागल बनाया, जरा सोचिए, वो धन आपको पागल नहीं बनाएगा? तो भाई इसका नाम सुधार नहीं है, इसका नाम कर्तव्य विज्ञान नहीं है। कर्तव्य विज्ञान का अर्थ केवल इतना है कि अगर आप सचमुच मानव हैं तो जो वस्तु आपको प्राप्त है, शरीर भी एक वस्तु है मेरे भाई, इंद्रियां भी एक वस्तु है, बुद्धि भी एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, प्राण भी एक वस्तु है, तो जो वस्तु आपको प्राप्त है उसका आप सदुपयोग कीजिए। आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम अपने मन से किसी को बुरा न समझें, तो ध्यान दीजिए, आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम शरीर को संयमी बना सकें, आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम बुद्धि को मन के अधीन न रखें। तो जो चीज आपको प्राप्त है उसी का जब आप सदुपयोग नहीं कर पाते, तो जो आगे प्राप्त होगी उसका आप सदुपयोग कर पाएंगे? यदि आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मानव सेवा संघ की नीति में ये बात स्वीकार कर ली गई कि प्रत्येक मानव मानव है, और मानव होने के नाते उतना ही महान है जितना कोई भी मानव हो सकता है। एक मिल ओनर जितना मानव हो सकता है, एक मजदूर उतना मानव हो सकता है, एक आंखों का अंधा जितना मानव हो सकता है, एक आंखों वाला उतना ही मानव हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि परिस्थिति भेद होने से, योग्यता भेद होने से हम मानव में भेद हो जाए, इस बात को मानव सेवा संघ नहीं मानता। तो किस बात को मानता है कि जब मानव होने के नाते हम सब एक हैं, तो हमारा आपका वास्तविक जीवन एक है, और वो वास्तविक जीवन कब मिलेगा? जब कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, आस्तिक विज्ञान और हमारे जीवन में एकता हो। तो मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार कर्तव्य विज्ञान का अर्थ है दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। अब इस मंत्र को आप
مزدور اور مہاجر میں ملا لیجیے, دو برگوں میں ملا لیجیے, دو دیشوں میں لگا لیجیے, دو سمبندیوں میں لگا لیجیے. اگر سبھی استھلوں پر اس منتر سے سفلتا نہ ہو جائے تو آپ جو چاہیں سو کیجیے. اور پھر کیا ہوگا بھائی, کرتویہ وگیان کے آدھار پر ایسے سماج کا نرمان ہوگا کہ پھر ایسے سماج کا نرمان ہوگا کہ جس سماج کو نہ تو رانی کے پیٹ سے نکلے ہوئے راجا کی آوشیکتا ہو, اور جس سماج کو نہ جنتا کے پیٹ سے نکلے ہوئے پرائم منسٹر کی آوشیکتا ہو, یعنی راشٹر کی بھی آوشیکتا نہیں رہے گی. کب؟ جب جیون میں کرتویہ وگیان ہوگا تب. اب کرتویہ وگیان کس کے جیون میں ہوگا, مانو سیوا سنگھ کا سمبندھ میں نرنے ہے کہ یہ اپدیش دوسرے کو نہیں دینا ہے, یہ تو ہم کو اور آپ کو سوئم ہی, یعنی ہم کو ماننا ہوگا ہمارے جیون میں کرتویہ وگیان ہو, آپ کو ماننا ہوگا ہمارے جیون میں کرتویہ وگیان ہو. تو اپنے سدھار سے پورو جو دوسرے کے سدھار کی بات کہی جاتی ہے, یہ سدھار بعد ایک پیشہ ہے, اور میں بھی اسی پیشے میں ہوں, کیونکہ میں بھی تو یہی نہ کر رہا ہوں, لیکن یہ کرتے ہوئے میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اپنا سدھار جو نہیں کر سکتا وہ کسی کا سدھار نہیں کر سکتا, سدھار کے نام پر اپنی کامناؤں کی پورتی کر سکتا ہے. کل میں ودیارتھیوں سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تم کس کو بڑا آدمی مانتے ہو, تو لوگوں نے جواہر لال جی کا نام لیا, راجندر بابو کا نام لیا, بڑے بڑے لوگوں کا لیا, مہاتما گاندھی کا لیا, تلک کا لیا. تو میں نے کہا کہ سیوا کام تیاگ میں ہونا چاہیے کہ بھوگ میں, تو وہی چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں تیاگ میں. تو ہم نے کہا ان میں سے کچھ لوگوں نے تیاگ میں انت کیا کہ بھوگ میں, کہ بھوگ میں. تو سیوا ہوئی کہ پنیہ کرم, تو بچوں کہنا پڑا پنیہ کرم. تو آج کل ہم لوگ سادھن کرتے سمے اس بات کو بھول جاتے ہیں, اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مانو ہیں, اور کرتے کیا ہیں کہ سادھن سیکھنے کو سادھن مانتے ہیں, سادھن سکھانے کو سادھن مانتے ہیں, اور اسادھن کا تیاگ کر کے سادھن کی ابھیویکتی نہیں ہونے دیتے. اب آپ نہ دھیان دیجیے اور گمبھیرتا سے اس بات پر وچار کیجیے کہ اپنے ادھیکار کا تیاگ کیا یہ شرم سادھ ہے یا وچار سدھ ہے. اگر آپ نے یہ وچار کر لیا کہ چاہے پت پتنی کے بیچ کی بات ہے, اور چاہے پتا پتر کے بیچ کی بات ہے, اور چاہے پرجا اور راشٹر کے بیچ کی بات ہے, چاہے دو برگوں کے بیچ کی ہو, چاہے دو دیشوں کے بیچ کی ہو, اگر آج کا مانو اس بات کو مان لیتا ہے کہ مجھے اپنے ادھیکار کا تیاگ کرنا ہے, سچ مانیے ودیمان راج تو دوسرے کے ادھیکار سے ناش ہوگا, لیکن نوین راج کی اتپتی نہیں ہوگی. یہ بڑا بھاری ستیہ ہے. ودیمان راج دوسرے کے ادھیکار کی رکشا سے ناش ہو جاتا ہے, اور اپنے ادھیکار کا تیاگ کرتے ہی نوین راج کی اتپتی نہیں ہوتی, اور جب نوین راج کی اتپتی نہیں ہوتی تو راگ رہت ہونے پر جو پرورتی ہوتی ہے اس میں کرتوتو کا ابھیمان نہیں ہوتا, اس میں پھل کی آسکتی نہیں ہوتی. تو آج ہم سے بھول کیا ہوئی کہ کرم یوگ کو خوب سیکھا اور خوب سکھایا پر کیا نہیں. دھیان دیجیے, سیکھا خوب کہ کہایا خوب, کیا نہیں. کیوں نہیں کیا کہ اپنے ادھیکار کا تیاگ آج اوشت نہیں ہے, دوسرے کے ادھیکار کی رکشا میں آج آکلتا نہیں ہے, ویاکلتا نہیں ہے. ویاکلتا تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہائے ہائے ہم اگر دوسرے کے ادھیکار کا رکشا نہیں کریں گے تو ہمارا ودیمان راگ ناسی ہی نہیں ہوگا. اگر یہ بھاونا ہم اور آپ سویکار کر لیں تو ہر ایک بھائی کا پرتیک پرورتی دوارا آج ایک بڑے سمجھدار سادھک ہمارے ابھن ہردے ہم سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بندھن ہو گیا, بڑی سجگتا ہو گئی. ذرا سوچو تو صحیح, دوسرے کے ادھیکار کی رکشا بندھن ہے, کہ مہان سوادھینتا ہے, اور اپنے ادھیکار کا کیا کوئی شرم ہے؟ لیس ماتر بھی شرم نہیں ہے. تو جو آپ کر سکتے ہیں اتوا جو آپ کرتے ہیں اس میں کیا اس بات کا پرکاش ہے کہ ہم دوسرے کے ادھیکار کی رکشا کر رہے ہیں؟ ایسا ہے. اچھا, اور کیا آپ نے اپنے ادھیکار کا تیاگ کر دیا ہے؟ یعنی اپنے ادھیکار کا تیاگ کر دیا ہے اور پرورتی دوسرے کے ادھیکار کی رکشا میں ہے تو پرورتی بھی راگ رہت ہونے کا سادھن. اور سرکار نیورتی بولے نیورتی بھی راگ رہت ہونے کا سادھن, اور جہاں راگ رہت بھومی پراپت ہوئی کہ یوگ روپی برکش آ گیا.
اپنے آپ یہ بڑا الوکک وقت ہے, کھینچنا نہیں پڑتا ہے. اور جہاں یوگ روپی برکش آیا کہ اس میں تتو گیان روپی پھل لگ گیا اپنے آپ, اور جہاں تتو گیان روپی پھل لگا کہ اس میں پریم کا رس پریپورن ہے.
تو سادھن کا آرمبھ کہاں سے ہوا بھائی؟ کرتویہ وگیان سے.
انت کہاں ہوا؟ آستک وگیان میں. آستک وگیان میں اور مدھی میں کیا ہے؟
یوگ وگیان, ادھیاتم وگیان. اب ذرا دھیان دیجیے کہ کرتویہ وگیان کا پھل ہے سندر سماج کا نرمان, یوگ وگیان کا پھل ہے سامرتھ سمپادن, ادھیاتم وگیان کا پھل ہے سوادھینتا اور امرتو, آستک وگیان کا پھل ہے اگاد انت رس. جہاں یہ سمست وگیان ایک ہو جاتے ہیں, ایک ہو جاتے ہیں, اس کا نام مانو سیوا سنگھ کی بھاشا میں مانوتا ہے. اور اس مانوتا میں ہی پورتا نیت ہے. کیوں؟ مانو کی مانگ سبھی کو, اور مانو کی بولے اپنی کوئی مانگ نہیں. آپ کہیں گے مانو کی مانگ سبھی کو کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ مانو جیون جگت کے لیے اپیوگی, یہ اس کی کسوٹی ہے. اور مانو جیون اپنے لیے اپیوگی, اور مانو جیون پربھو کے لیے اپیوگی. تو مانو سیوا سنگھ اسی کو مانوتا مانتا ہے کہ جس کا جیون سبھی کے لیے اپیوگی سدھ ہو, اور وہ ہو سکتا ہے. کیوں کیوں ہو سکتا ہے؟ کہ اس جیون کے لیے ہمیں پر کی اور نہیں دیکھنا ہے. دیکھیے مانوتا کا ہراس تبھی ہوتا ہے جب مانو جیون پا کر چاہے اس کی کتنی بھینکر پرستھتی ہو, کتنی پرتکول پرستھتی ہو, جب مانو ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میرے سکھ کا کارن کوئی اور ہو سکتا ہے, اتوا میرے دکھ کا کارن کوئی اور ہو سکتا ہے, یہی سب سے بڑی امانوتا ہے. اور یہ مانو کے لیے بڑے ہی کلنگ کی بات ہے کہ مانو جیون پا کر کوئی یہ سوچے کہ مجھے کوئی اور کسی اور سے سکھ ملے گا اور مجھے کسی اور نے دکھ دیا ہے. بھائی یہ بات جب تک ہم لوگ سوچتے رہیں گے سچ پوچھئے مانو جیون کا مہتو نہیں جان سکتے. اور جب مانو جیون کا مہتو ہی نہیں جان سکتے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سادھن کا پرشن کیا برہم میں پیدا ہوا؟ سادھن کا پرشن کیا برہم میں ہے یا سادھن کا پرشن جگت میں ہے؟ نہ جگت میں سادھن کا پرشن ہے سرکار, نہ برہم میں سادھن کا پرشن ہے, سادھن کا پرشن ہے مانو میں. اس لیے سادھن کا اتر دائتو مانو ماتر پر ہے. اور وہ سادھن ہمیں تبھی پراپت ہو سکتا ہے جب ہم اس بات کو سویکار کر لیں کہ کرتویہ وگیان کے دوارا ہم سندر سماج کا نرمان بنائیں گے, سندر سماج کا نرمان کریں گے. یوگ وگیان کے دوارا ہم سامرتھ سمپن ہو جائیں گے, ادھیاتم وگیان کے دوارا ہم امر ہو جائیں گے, اور آستک وگیان کے دوارا ہم اگاد انت رس کی اپلبدھی کریں گے. یہ جس کا ادیش ہے, اور جو سوادھینتا پوروک اس ادیش کو پورا کر سکتا ہے میرے وچار سے اسی کا نام مانو ہے, اور اسی کی مانگ جگت کو بھی ہے پربھو کو بھی ہے.
اہت کی کرپا سے دکھی پرانیوں کے ہردے میں تیاگ کا بل ایوم سکھی پرانیوں کے ہردے میں سیوا کا بل پردان کریں جس سے وہ سکھ دکھ کے بندھن سے مکت ہو آپ کے پوتر پریم کا آسوادن کر
कृतकृत्य हो जाए।